मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 12 दिसंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा कि कुछ समय पहले, बहुत दिन नहीं हुए हैं, मैंने जीवन के उद्देश्य पर कुछ बातें आप सबसे की थी। कभी कभी इत्तफाक होता है कि बाद में जो मेरे पास मेल आए, उन मेल में बहुत से लोगों ने जीवन के उद्देश्य के विषय को और आगे बढ़ाने की बात कही और उनका कहना यह था कि इसे और स्पष्ट किया जाए। शायद मैं अपने उस एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाने में सफल न रहा हूं, तो उनकी यह मांग बिल्कुल जायज है और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए ही मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे आज इस विषय पर और कुछ बातें करनी चाहिए। सच पूछे तो जब मैं यह सोच रहा था कि मेरी बातें मेरे प्रिय श्रोताओं को क्यों बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई, या यूं कह लीजिए कि मेरी बात उन्हें आधी अधूरी लगी, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात कौंध रही थी और मैं पूरे माफीनामे के साथ उस कौंधती हुई बात को सबसे पहले आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मेरे दिमाग में यह बात कौंध रही थी कि आखिर में लोग यह जानने को क्यों इतने अधिक उत्सुक हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। और जो मैं कह रहा हूं क्यों लोग जानने को, तो लोग में देखिए, मेरे जो इस एपिसोड या ये जो प्रोग्राम है, इसके जो श्रोता हैं, इसमें जो बड़ी संख्या है वो नौजवानों की है। यानी कि एक अच्छी बात है कि नौजवान अभी से ही जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना चाह रहे हैं, और कभी कभी ये भी लगता है कि वो जानना ही क्यों चाह रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात का थोड़ा सा डर लगता है कि जब व्यक्तिगत तौर पर और व्यावहारिक रूप में मैंने जीवन के उद्देश्य पर चर्चा सुनी है, बातें सुनी हैं, प्रश्न सुने हैं, तो वो सारी की सारी बातें मोक्ष से जुड़ी जाती हैं। यानी कि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो निर्वाण की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। यानी कि जो जन्म का चक्र है कि अभी हम इस जन्म में हैं और फिर अगले जन्म में कुछ और बनेंगे, फिर अगले जन्म में कुछ और बनेंगे, तो इस चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है। अब हमको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्ष मिलेगा घर बार त्याग कर सन्यासी बन जाएं, या जाकर किसी गुफा में बैठकर तपस्या करें, ईश्वर की आराधना करें, व्रत उपवास करें, जो भी पूजा पाठ की पद्धतियां होती हैं अपने आप को उनमें लगा दें ताकि ईश्वर प्रसन्न होकर के हमें मोक्ष प्रदान कर दे। अगर मित्रों इस तरह के उद्देश्य के बारे में आप मुझसे जानना चाह रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इसके बारे में मेरा ज्ञान शून्य है। मैं इसके बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं, न तो मेरे पास उसका ज्ञान है और न ही सच पूछे तो मेरे पास उसकी कोई व्यावहारिक समझ है और न ही उसका तनिक भी अनुभव है। क्योंकि मैं तो ये मान करके चलता हूं कि यह जीवन मिला है और इस जीवन को अच्छे तरीके से जी लेना, आनंद का उत्सव मना लेना, और अपने लिए जो हर एक ने कर्म निर्धारित किया है, या यूं कह लीजिए कि ईश्वर ने उसके लिए कर्म निर्धारित कर दिया है, उस कर्म को ईमानदारी पूर्वक करके और दुनिया से विदा लेना ही शायद जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य हो सकता है। और कल आपने देखा कि मैंने एक ऐसे संत के बारे में बात की थी जिन्होंने जीवन में कोई बहुत बड़े 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 काम नहीं किए, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैं हमारे फूफा जी के निधन पर जब घर पर गया तो मैंने देखा कि सारा शहर उमड़ा हुआ था, वहां आया हुआ था, सबकी आंखें नम थी और सब केवल उनकी प्रशंसा में बातें कर रहे थे। हालांकि देखिए, जब भी कोई किसी के निधन पर जाता है तो बातें तो प्रशंसा की ही करता है, लेकिन वो सच में प्रशंसा के योग्य थे। और सच पूछे तो उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा सोच विचार करके नहीं किया कि नहीं, मुझे ये बड़ा काम करना है ताकि मृत्यु के बाद लोग मेरे बारे में सोच सोच करके रोएं और मेरे घर पर इकट्ठे होएं या लंबे समय तक मुझे याद रखें। नॉट एट ऑल। यानी कि उन्होंने एक साधारण जीवन जिया और उनको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद साधारण जीवन ही सबसे अधिक असाधारण होता है। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को एक बात, और वो ये कि आप जो बहुत ही महान लोग हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि इसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, मैं कुछ नाम बता सकता हूं, आप गांधी जी के बारे में सोच सकते हैं, डार्विन के बारे में सोच सकते हैं, आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो आप रामानुजन के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप अर्थशास्त्री हैं तो चलिए अभी अभी नोबेल प्राइज मिला अभिजीत बनर्जी के बारे में सोच सकते हैं, समाज सुधारक है तो आप बाबा आमटे के बारे में सोच लीजिए, विनोबा भावे जी के बारे में सोच लीजिए, साहित्यकार हैं तो आप प्रेमचंद के बारे में सोच लीजिए, कैफी आजमी साहब के बारे में सोच लीजिए। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, हो सकता है कि इनमें से आप किसी को बड़ा मानते हो या आपको ऐसा लगता हो किसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया, तो आप इनकी बायोग्राफी पढ़िए, आपको चाहिए कि आप इनकी जीवनियां पढ़िए, किसी के एक की जीवनी पढ़िए और केवल उस जीवनी में यह ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसने कब अपने जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित किया, जीवन का उद्देश्य, या यूं कह लीजिए कि कब अपने काम के लिए कुछ फैसला किया और फिर उसके लिए वो क्या किया उन्होंने, कैसे वो इतने महान बन गए, कैसे वो इतने असाधारण बन गए, क्या उन्होंने सोच विचार करके कुछ किया या सीधे अपने काम में लग गए और काम में ईमानदारी के साथ लगे रहे, उस काम से हटे नहीं, ईमानदारी के साथ लगे रहे, ये सबसे बड़ी बात है, ये अंडरलाइन करने वाला शब्द है ईमानदारी, क्योंकि काम तो देखिए हम सब करते ही हैं तभी हम सबकी जीविका चलती है, लेकिन सवाल यह है कि हम उसमें ईमानदारी कितनी दिखाते हैं, क्योंकि जब किसी काम को ईमानदारी के साथ किया जाता है यानी कि अपनी चेतना की संपूर्णता के साथ किया जाता है, उसमें डूब कर किया जाता है और उन नियमों कानूनों आदर्शों और मूल्यों के तहत किया जाता है जो उस काम के लिए निर्धारित है, तो उस काम में एक बहुत ही अलग तरीके की चमक आ जाती है। काम छोटा ही होगा लेकिन वो अपनी चमक के कारण इतना ज्यादा दैदीप्यमान हो जाता है, वह इतना प्रकाशवान हो जाता है कि पूरी दुनिया उधर उसको देखने के लिए बाध्य हो जाती है, दुनिया को मजबूरन उसे देखना पड़ता है, और जैसे ही दुनिया उसे देखती है वैसे ही आप यूं कह लीजिए कि वो काम छोटा सा ही क्यों ना हो बड़े से के दायरे में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ही इस बात का फैसला करने के लिए कह रहा हूं कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी मैंने जितनी भी बायोग्राफीज के बारे में आपको बताई हैं, हो सकता है कि दूसरों की बायोग्राफीज ढूंढने में आपको दिक्कत हो, लेकिन कम से कम गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसे ढूंढने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, हर जगह आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है, मुझे लगता है कि गांधी जी की आत्मकथा जितनी सस्ती कीमत में आपको मिलती है पैसे की दृष्टि से, उतनी सस्ती शायद ही कोई किताब हो, तो आपको सस्ती में भी मिल जाएगी, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, तो आप पढ़ करके देखिए और निर्धारित करने की कोशिश कीजिए कि गांधी इतने महान कैसे हुए, क्यों हुए, तो आपको पता लगेगा कि कोई बड़े काम की वजह से महानता उन्हें नहीं मिली है, बड़े काम तो उसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि छोटे छोटे काम भी अपने आप बड़े काम बन जाते हैं, लेकिन गांधी की जो महानता है वह उनके आचरण के कारण है, आचरण के कारण, और आचरण को यह मत समझिए कि काम से अलग है, आचरण की जब आप परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वही होगा कि जो काम हाथ में लिया गया उसे कितने ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों सच पूछिए तो हो सकता है कि मैंने आज आपको निराश किया हो, कि आप समझ रहे हो कि मैं कोई मोक्ष निर्वाण और मुक्ति की बात करूंगा और उसके बारे में कुछ उपाय बताऊंगा, ऐसा मैं बिल्कुल इसके योग्य अपने आप को समझता ही नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि यदि यह तथ्य आपके दिमाग में हो भी तो आप कर्म योग का रास्ता अपनाइए, मान करके चलिए कि कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए हमारे राम हमारे कृष्ण इस बात के प्रमाण हैं। आप बताइए कि क्या राम ने वैराग्य लिया, कोई तप किया, क्या कृष्ण सन्यासी होकर के छोड़ छाड़ करके कहीं जंगलों में निकल गए, इन सब ने अपना जीवन जिया, बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जिया और इन सब के जीवन का अंत हो गया और बाद के समाज ने, बाद की चेतना ने, बाद की मेधा ने रियलाइज किया कि अरे ये तो कोई सामान्य से लोग नहीं थे, ये तो असाधारण थे, और फिर उन्हें ईश्वर मान लिया गया। तो आप जिस दिन इस तथ्य को रियलाइज कर लेंगे, मुझे लगता है कि अपने अंदर आप उस दिव्य के अंश को भी पहचान लेंगे जो सच में हम सबके अंदर है, और जैसे ही आप उसको पहचान लेंगे एक साधारण जीवन असाधारण होने की यात्रा पर निकल पड़ेगा। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सब मुझे अनुमति दें, नमस्कार।